بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله عليكم أجمعين. أمك قدر حساس اور سنسٹیو ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے وہ سوسائٹی یا خودکشی سے ریلیٹڈ ہے. ہم جو گفتگو کریں گے وہ تین ویڈیوز کے اوپر مشتمل ہوگا، اور تینوں ویڈیوز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کور کریں، اور ان کیس اگر آپ کی طرف سے کوشچنز کوئی آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی نئی چیز آ جاتی ہے تو اس کو ہم ایک اور ایکسٹرا ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم دسمبر کے مہینے میں ہیں، اور انٹرنیشنلی ہر سال جو ہے 10 دسمبر کو غالباً ایک ڈے منایا جاتا ہے جو خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO اور اس سے ریلیٹڈ جو مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں وہ آرگنائزیشنز وغیرہ اس مسئلے میں لوگوں میں ایک اویئرنیس اور ایک آگاہی مہم شروع کرتی ہیں تاکہ جو بڑھتی ہوئی جو خودکشی کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. ایک اندازے کے مطابق دنیا میں جو موت کی جو پہلی 10 بڑی وجوہات اور ریزنز ہیں، کاز آف ڈیتھ ہے، وہ ان میں سے ایک سوسائڈ اٹمپٹ ہے اور خودکشی ہے. یہ بہت ہی الارمنگ ہے اور اچھی چیز نہیں ہے. یہ جو دن منایا جاتا ہے اس کا جو بین الاقوامی سطح پر جو ایک ریزن اور مقصد اور ہدف بتایا ہے تو وہ یہی ہے کہ جی ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں، خودکشی کے جو ایک رجحان اور ایک لوگوں کے اندر سوچ آ رہی ہے اس سوچ کا جو ہے خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مختلف لوگ جو ہے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بیسک کوشچن ہے، ایک ایسا بنیادی سوال جس کا سامنا ہم سب کو رہتا ہے. بالآخرہ یہ آدمی سوچتا ہے کہ کیوں، اور جو بھی اس طرح کا خدا نہ کرے کوئی اٹمپٹ کرتا ہے خودکشی کا اور مر جاتا ہے تو اپنے پیچھے بھی یہ کوشچن چھوڑ کے جاتا ہے کہ کیوں اس نے خودکشی کر لی، آخر وجہ کیا تھی؟ کیا وہ زندگی سے اس قدر تنگ اور مایوس ہو گیا تھا، یا اس کے حالات ایسے تھے کہ اس نے موت ہی کو گلے لگا لیا، اور کیا یہ اس کا ایک درست اقدام ہے اور اس نے ٹھیک کام کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹھیک کام تو نہیں کیا ہے اس نے. ایک اور جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کا جو ریزن ہے وہ لوگوں کی زندگی میں خوشی نہیں ہے، یا وہ محروم ہے کسی چیز سے، یا کوئی چیز اس کو نہیں ملی، یا اس کی زندگی بڑی مشکلات میں ہے اس لیے وہ یہ اٹمپٹ کر رہا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں اور سب کچھ ان کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی تکلیفیں اور مشکلات اور مصائب سے خودکشی کا اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے جتنی تو عام طور پر ایک کنسپٹ اور پرسپشن ہے کہ شاید اس کی وجہ سے ہے. تو بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ریسرچ بتا رہی ہے. اور یہ بھی عرض کر دیں کہ دنیا میں جتنی بھی یہ سوسائڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ریسرچ ہو گئی ہے، اس ریسرچ میں اتھینٹک ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک چیز کے اوپر سب کا اتفاق ہے، سب اس کو جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ جو ایج ہے، موسٹلی میں نہیں کہوں گا سارا کا سارا، لیکن میکسیمم جو ایج ہے وہ 20 سے 30، 20 سے 30 سال کے درمیانی جو ایج ہوتی ہے کسی بھی مرد اور عورت میں، اس میں زیادہ تر یہ رجحان پایا جاتا ہے. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دوں جو بہت ہی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ عام طور پر ایک پرسپشن اور ایک تصور یہ موجود ہے ہمارے درمیان کہ زیادہ تر جو ہے خودکشی کرنے کی جو ریزنز ہیں، جو وجوہات ہیں، وہ ممکن ہے نفسیاتی یا فزیکل ایشوز ہیں. تو یہ بالکل بھی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ ایسا بالکل بھی نہیں. آپ حیران ہوں گے 65% خودکشیوں کا ریزن بالکل نہ نفسیاتی مسائل ہیں نہ فزیکل ایشوز ہیں، بلکہ اس کے پیچھے اگر ریزن دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ غلط قسم کی تعلیم و تربیت تھی، سماجی اور تہذیب و ثقافت کے درمیان ایک بیلنس نہ رکھنا اور بے اعتدالی کی طرف جانا، خاندان کے اندر لڑائی جھگڑے، کنٹینیوسلی مسائل، کسی ایموشنل اٹیچمنٹ یا جذباتی لگاؤ کی وجہ سے، اور اس میں ناکامی کی وجہ سے پھر جو ہے آدمی ہوپ لیس ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے. اسی طرح جو ہے امتحانات میں، کیونکہ بہت سے سوسائٹیز کے اندر ایک بڑا ایشو بنایا جاتا ہے کہ بچہ امتحان میں گریڈ نہیں لے سکا، पोजीशन नहीं ले पाया या वो पास नहीं कर सका वगैरह वगैरह। और हाँ, इसमें फिजिकल जो मुख्तलिफ अमराज हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उसकी वजह से या बाज़ औक़ात शर्म हया के बाइस जो है सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, और इस तरह की बहुत सारे और रीजंस हैं। इन रीजंस की वजह से जो है इंसान जो है बाज़ लोग इस तरफ खुदकुशी की तरफ जाते हैं, और खुदकुशी जैसे बहुत ही गलत डिसीजन को लेते हैं, बिल्कुल ही दुरुस्त डिसीजन उनका नहीं होता किसी भी तौर पे, लॉजिकली क्रिटिकली किसी हवाले से इसको जो है कोई एक्सक्यूज वगैरह कोई बहाना इसका नहीं बनाया जा सकता है। मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अगर इंसान के अंदर दीनी और मजहबी रुकावट मौजूद हो ना, कंफ्यूजन मौजूद हो, या अटैचमेंट उसकी ज्यादा ना हो, या उस तरफ उसकी अटेंशन ना हो, तवज्जो ना रखे, तो भी जो है जो मुश्किल आती हैं वो उसके लिए बहुत बड़ी लगती हैं, और एक बड़े जुर्म की तरफ हो जाता है और एक बड़े गुनाह की तरफ जाता है जो कि खुदकुशी है। देखें, आप परेशान ना हों, कहें जी मौली साहब बात कर रहे हैं, तो जाहिर है उसने हर चीज को ले जाके मतलब मजहब के साथ नफी करनी है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैं बिल्कुल भी हर चीज को ले जाके उसका सोल्यूशन मजहब के अंदर से निकाल के नहीं दे रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, थोड़ा सा हौसला रखिए और सब्र कीजिए। पर हैरान ना हूं कि खुदकुशी से बचाव का एक बेहतरीन सोल्यूशन मजहब के अंदर मौजूद है, क्योंकि मजहब में रूहानियत है, मानवियत है, वो इंसान को रूहानियत और मानवियत बख्शता है। वो जो सेक्टर है इंसान के अंदर, रियल सेक्टर खला है, उस खला को पूरा करता है, इंसान में पैशन और सब्र बढ़ा देता है, हौसला बढ़ा देता है, खुदा जैसी एक अजीम कुवत के साथ उसको अटैच कर देता है और उससे वो एनर्जी हासिल कर लेता है, मुश्किलात को बर्दाश्त करने सहने की हिम्मत और ताकत दीन हमें अदा करता है, मजबूत बनाता है, जिंदगी की जितनी डिफिकल्टीज हैं उसको फेस करने का एक एक एक, एक हुनर देता है इंसान जो है। मैंने अर्ज किया कि आप परेशान हो क्योंकि मेरी एजुकेशन मजहबी है, तो लिहाजा मैं हर चीज को जो है ना, हर चीज की सॉल्यूशंस और हर चीज को मजहब के साथ अटैच करता हूं। नहीं, बिल्कुल मैं जानबूझकर या अननेचुरल तरीके से नहीं कर रहा, ये हकीकत है। चलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, जिसको हम और आप मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, नोबल इनाम याफ्ता, नोबल प्राइज जिसको मिला है, फिजिशियंस भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकाट्रिस्ट भी हैं, जोर देकर ये बताते हैं कि इसका हल जो है एक बड़ा और अच्छा हल मजहब के अंदर है, मजहबी जिंदगी गुजारने से है, रूहानियत और मानवियत के साथ अटैच करने में, खुदा से लो लगाने में है, इंसान की जिंदगी को मानी बख्शता है मजहब, एक मीनिंगफुल लाइफ बनाता है, खला और खोखलेपन को दूर करता है, खुशियों दुख मुसीबत नाकामियों नुकसानात कामयाबी मुश्किलात आसानियां आफात इम्तिहान आजमाइश, इस जैसे तमाम मराहिल में दुरुस्त डायरेक्शन देता है, एक दुरुस्त गाइडेंस फराहम करता है। मैंने अर्ज किया कि मजहबी जो अकीदा है और मजहबियत है वो इंसान में एक रेजिस्टेंस पैदा करती है, मुजाहिमत अपनी मुश्किलात को लेकर, तलखियों की हकीकी जो है इंटरप्रिटेशन करता है, ये जो मुश्किलात हैं इसकी हकीकी तशरीह क्या है, कैसे मैं अंडरस्टैंड करूं इसको, क्योंकि ये तलखियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, हमेशा हमें बुरी निगाह से नहीं देखना चाहिए। ये मुश्किलात को जो आई है हमारी लाइफ में, इसको हमें बुरी निगाह से नहीं देखना, जिसके अंदर अच्छाई का पहलू मौजूद होता है, लेकिन उस अच्छाई को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, हमारे जो देखने का जो जाविया है वो बाज़ औक़ात सही नहीं होता, हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, मनफी 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 है। असा अंतक रहू शही अनबह हुआ खैरुल्लकुम का, बाज़ औक़ात बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बज़ाहिर बुरी लगती हैं, उसके अंदर खैर पोशीदा है। चले, मैं बात कर रहा था डॉक्टर अलेक्सिस कारल की, जो फ्रेंच हैं, एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं और राइटर हैं, नोबल प्राइज भी रखते हैं। उनकी किताब है द प्रेयर के नाम से, और फ्रेंच में लिखी है, इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है, और भी जबानों में, अरबी उर्दू, उर्दू में शायद कुछ सेलेक्टिव हिस्से हुए हैं, फारसी में तर्जुमा हुआ, मैंने सबसे पहले इसको फारसी में ही पढ़ा था। वो लिखते हैं अपनी इस किताब के अंदर, ये फिजिशियन भी हैं, नोबेल इनाम याफ्ता हैं डॉक्टर अलेक्सिस कारल, और मुसनिफ भी हैं और मजहबियात को भी समझते हैं। अब ये इनकी बात बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। वो क्या लिखते हैं इस किताब के अंदर, लिखते हैं दुआ सबसे मजबूत कुव्वत है जिसे इंसान बना सकता है, ऐसी कुव्वत जिसका वजूद जिसका वजूद सकल की कुव्वत की तरह है, यानी जमीन की जो एक कुव्वत है, कशिश है, उसकी तरह है। मैंने अपने तिब्बी पेशे में ऐसे आदमी देखे हैं जिनका इलाज कोई काम ना आया और वो दवाइयों से मायूस हो गए, दुआ व इबादत और दुआ की ताकत से बीमारी और उदासी से निजात पा गए। ये डॉक्टर एलेक्सिस कारल कह रहे हैं उस किताब के अंदर, द प्रे के अंदर। दुआ रेडियम की तरह है, एक रोशन जरिया है जो बेसाख्ता पैदा होता है, यानी एक नूरानी जरिया है। दुआ के जरिए इंसान खुदा जैसे लामहदूद जरिए से अपील करके अपनी महदूद ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुद को इस लामहदूद ताकत से जोड़ते हैं और जुड़ जाते हैं, एक लामहदूद कुव्वत के साथ अटैच हो जाता है जो पूरी कायनात को मुत्तहिद करती है। इस दुआ से हमारी कमियां पूरी हो जाती हैं, पूरी हो जाएंगी, और हम मजीद कुव्वत और बेहतर हालत के साथ उठेंगे। जब भी हम जज्बाती तौर पर दुआ में खुदा से मुखातब होते हैं, हम अपनी रूह अपने जिस्म दोनों को अच्छे तरीके से बदल देते हैं। इंसान हमेशा दुआ और मुनाजात से मुफीद नताइज हासिल कर सकता है, जिस तरह बहुत सी मेडिसिन के बारे में कहा जाता है। दुआ सुकून पैदा करने के अलावा मुकम्मल और सही तरीके से इंसानी दिमाग की सरगर्मियों में, एक्टिविटीज में, एक किस्म की बातनी वसअत इंटरनली और तोसी पैदा करती है। बाज़ औक़ात हिम्मत और ताकत को तहरीक देती है, हमारी हिम्मत और ताकत को मोटिवेट करती है, एक मूवमेंट निजात करती है। लापे जो है फ्रेंच में इस किताब का नाम है, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम और मजीद इस तरह के जो हमारे साइकाट्रिस्ट हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, इवन सर्जरी से ताल्लुक रखने वाले मेडिकल के लोग हैं जिन्होंने हकीकत को मालूम कर लिया है और ऑनेस्टी के साथ उन्होंने जो है उस हकीकत को दूसरों तक बयान भी किया है, उनके हम और चीजें पेश करेंगे, और फिर हम अपनी तालीमात में जाएंगे कुरान और रिवायात में, कुरान और इतरत की तालीमात के अंदर क्या है। और इंशाल्लाह मैंने अर्ज किया था कि ये वीडियो, तीन वीडियोस पर ये टॉपिक मुश्तमिल है। पहला जो है वो खुदकुशी के मौजू के बारे में एक जनरल गुफ्तगु जो हमने की और कुछ उसके सोल्यूशन की तरफ इशारा कर दिया। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसके रीजंस बताएंगे कि क्यों, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, एक लिस्ट हम दे सकते हैं इंशाल्लाह, और इसके जो राह हल क्या है उसकी तरफ भी हम एक कोशिश करेंगे कि एक लिस्ट की तरफ पेश करें, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे कि बीन एक मुसलमान के, एक बीन एक कुरान इतरत के फॉलोअर्स के खुदकुशी का दी एंड क्या है। जाहिर है दुनियावी तौर पर तो मर गया, लेकिन उसके बाद आगे क्या होने वाला है, हमें आईमे मासूमीन क्या बताते हैं कि जो इंसान खुदकुशी करता है विद एनी रीजन उसका अंजाम क्या होता है इलल अबद, और इसके अलावा भी हम मजीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।